तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चर्चा तो बहुत सुंदर आप श्रवण कर ही रहे थे, बात तो वही है, बार बार अलग अलग तरीके से कहना होता, बात वही कहनी होती है, क्योंकि वेदांत का जो विषय है वो तो यह जीव ब्रह्म की एकता, और जीव ब्रह्म की एकता कैसे होगी यही सब पद्धति से बार बार उपोद्घात से बताया जाता है। और जो हमारी बात चल रही है अध्यास की, कि सकल दृश्य सो अध्यास, संपूर्ण जो दृश्य है वह अध्यास है। कल भी हमने अध्यास का विचार किया था कि अध्यास किसको कहते हैं, अध्यास का जो परिभाषा है, लक्षण है, अनेक प्रकार से शंकराचार्य जी महाराज करते हैं ब्रह्म सूत्र के अंदर। उन्होंने यहाँ अध्यास से ही शुरू किया, क्योंकि जब तक अध्यास की सिद्धि नहीं होगी तब तक ब्रह्म में, जब तक अध्यास की अज्ञान की सिद्धि नहीं होगी तब तक मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। पहले तो अज्ञान चाहिए, जितना नैसर्गिक लौकिक व्यवहार है केवल अध्यास मात्र है, अध्यास मूलक है। इसलिए जब तक अज्ञान की अध्यास की सिद्धि नहीं होगी तब तक मोक्ष की इच्छा ही नहीं होगी, मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। जब मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी तो फिर शास्त्र व्यर्थ हो जाएंगे ना। मोक्ष की सिद्धि का अर्थ है कि प्राप्त की प्राप्ति, लेकिन जो बीच में पर्दा है ना उसी को हटाने की बात है। केवल अध्यास की निवृत्ति करनी है। अध्यास अज्ञान मूलक है, अध्यास का कारण है अज्ञान, और अज्ञान जो है वो अनिर्वचनीय है, ना वह सत्य है ना असत्य है, ना सत्य असत्य उभय है, दोनों ही नहीं है। उसी की निवृत्ति के लिए ही पूरा शास्त्र है। तो अध्यास का, वैसे तो अध्यास को कह देते हैं भ्रम, भ्रांति, और भ्रांति कहने से भी कुछ मतलब समझ में नहीं आता। तो शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि अतस्मिन तद बुद्धि अध्यासा, अतत् जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ना समझ करके उल्टा समझ लेना। जैसे रज्जू को हमने सर्प मान लिया, और केवल सर्प ही जो है उसको अध्यास नहीं कहते। एक जो विषय वस्तु है ब्रह्म की, जो विषय वस्तु है वो और उसका ज्ञान, दोनों को अध्यास कहते हैं। सर्प है और सर्प का जो कल्पित सर्प है और सर्प का कल्पित ज्ञान है, दोनों को अध्यास कहते हैं, दोनों को ब्रह्म कहते हैं। और वाणी यही बात कहती है कि माधवे क्या कहिए ब्रह्म ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा। यही कहा है रविदास जी महाराज ने कि जैसा हम मानते हैं किसी वस्तु को वैसी होती नहीं है, उसी को अध्यास कहते हैं। उन्होंने भी यही दृष्टांत दिया जो हमारे शास्त्रकार देते हैं कि हमारे को अध्यास हो गया था कैसे, जैसे नरपित एक सिंहासन सोया, सुफने भया भिखारी। राजा जागबल की बात भी जनक की भी कहते हैं, हरिचंद भी कहते हैं, किसी राजा की बात कहते हैं कि वो सिंहासन पे बैठा हुआ था। दिन की बात है, जागृत की बात है, सिंहासन पे बैठे बैठे उसको निद्रा आ गई, तो निद्रा में उसको ऐसा लगा कि मैं भिखारी हो गया। ये सब प्रसंग आपने सुन रखा है। तो क्या हुआ था, अध्यास था ना, वो भ्रम हो गया। रविदास जी महाराज कहते हैं माधव ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है, कि हम अध्यास के कारण अपने आप को जीव मान रहे हैं। जीव हम है नहीं वास्तव में, और संसार का भी हमारे को अध्यास पड़ गया है। जिस प्रकार हमारे को रज्जु में सर्प का कल्पित का ही अध्यास हो रहा है, जब हम देखते हैं लाइट लेकर के, टॉर्च लेकर के, तब हमारे को पता चलता है कि ये सर्प तीनों कालों में था ही नहीं। जैसे कल भी कह रहे थे ना आपको कि जगत जो है तीनों कालों में है नहीं, पर हमारे को प्रतीति कहाँ होती है कि नहीं है। यही बात एक बार वशिष्ठ जी से राम जी ने कही, बात योग वशिष्ठ में आती है बात। एक बार राम जी ने पूछा कि गुरु जी आप तो हर रोज यही बात कहते हैं कि सृष्टि हुई नहीं तीनों कालों में, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, तो सृष्टि कैसे नहीं हुई, इस बात का उत्तर गुरु जी दीजिए। तो वशिष्ठ जी महाराज मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। जब यह प्रश्न किया राम जी ने तो वशिष्ठ जी मौन हो गए, काफी देर मौन रहे। उसके बाद जब बोले तो कहते गुरु जी आपने उत्तर नहीं दिया। वो कहते उत्तर तो राम जी दे दिया है, जो आपने प्रश्न किया वो प्रश्न ही सही नहीं है, प्रश्न ही सही नहीं है, जो हुआ ही नहीं उसका प्रश्न क्या करना, जो मैंने मौन दिया यही उत्तर है। वो कहते इसका कोई उत्तर नहीं है, जो हुआ ही नहीं उसके लिए कहेंगे क्या, जो हो उसके लिए कोई व्याख्यान करके बताया जाए, जो है ही नहीं उसके लिए कहेंगे क्या। वशिष्ठ जी कहते मौन ही राम जी इसका उत्तर है, ये जगत तीनों कालों में हुआ ही नहीं, और जो कुछ बताया जाता है वो भी एक शब्द जाल है, जो हम वाणी से बोल रहे हैं ये भी तो एक, जो भी घाट माट मठ जो भी वस्तुएं हमारे को दिखाई पड़ती है ना, केवल वाणी का विकार है, हुआ कुछ नहीं है। ये तो मतलब उपनिषद में आया है कि ये केवल वाणी का विकार है, विकारो नाम धेयम। ये कहते हैं कि जहां पर घड़ा घर बना हुआ ना घड़ा, वो घड़ा जो है, घड़ा जो है केवल वाणी का विकार है, घड़ा नाम की कोई चीज नहीं है, वहां तो मिट्टी ही केवल सत्य है। घड़ा है, सुराही है, किशोरा है, जो कुछ भी दिखाई पड़ता है केवल वाणी से हमने उसका नाम रखा है। एक मिट्टी के पिंड को गोल मटोल करके हमने उसका नाम घड़ा रख दिया क्या, वाणी से, तो वाणी का विकार हुआ ना, मिट्टी का विकार थोड़ी हुआ। वो मिट्टी तो मिट्टी है, कुछ बना नहीं है, हमने वाणी से उसको नाम ऐसा नाम दे दिया है। तो वाणी भी तब तक है जब, ये भी द्वैत में है ना, वाणी में जब तक द्वैत है तभी तक तो है, जब ये सारा कल्पित है वाणी कहाँ से आएगी, वाणी में सकल दृश्य में आ जाएगी ना, सकल दृश्य अध्यास हम बात कर रहे हैं, तो वाणी भी उसी सकल दृश्य में आ जाती है। पहले भी हमने निवेदन किया था कि इस बात को निश्चय किया कबीर जी ने कि 52 अक्षर लोक त्रय सब किश इन ही माँ है। 52 अक्षर माने जाते हैं संस्कृत के, 52 अक्षर, तो 52 अक्षर लोक त्रय, तीन लोक हैं जो वो हम जानते ही हैं, सब किश इन ही माँ है। तीन लोगों के अंदर पूरा मतलब जो हम ब्रह्मांड मानते हैं वो तीन लोगों में आ जाता है ना, तो तीन लोग जो हैं वो कहते हैं केवल वाणी का विकार है। कबीर जी ये बात निश्चित कर रहे हैं कि 52 अक्षर लोक त्रय सब किश इन ही माँ है, ये अक्षर खिर जाएंगे, जब प्रलय होगी तो ये अक्षर नहीं बचेंगे ना, अक्षर जब अक्षर नहीं बचेंगे तो अक्षरों के द्वारा ये सब कल्पित था ना, तो जब अक्षर नहीं रहे, वाणी नहीं रही, तो ये कौन सुनाएगा, तो क्या है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तात्पर्य यह है कि वाणी का विकार है, कुछ हुआ नहीं है, ना था ना है ना रहेगा, परंतु हमारे को प्रतीति नहीं होती क्योंकि हमारी आसक्ति इतनी है, हमने इसको सत्य मान रखा है। इस बात को नामदेव जी महाराज कहते हैं, मिथ्या भ्रम और सुपन मनोरथ सात पदार्थ जानिया। आपने शब्द सुना होगा सब गोविंद है, सब गोविंद है, जो शब्द है ना उसी के अंदर ये पंक्ति आती है कि मिथ्या भ्रम और सुपन मनोरथ सात पदार्थ जानिया। हमने ये जो मिथ्या है ना प्रपंच, स्वप्न की तरह है, पर सात पदार्थ जितने संसार के पदार्थ हैं उनको हमने सत्य मान रखा है। है तो मिथ्या है लेकिन हमने अपनी आसक्ति से इनको सत्य मान रखा है क्योंकि ये हमारे मन की सृष्टि है, हमने अपने मन के द्वारा रची हुई सृष्टि को सत्य मान रखा है। तो जब तक हम मन के द्वारा इनको, अभी आपको कह रहे थे ना महाजन जी के जो हमारा अंतःकरण है ना उसमें मलिनता है, जब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती तब तक ये हमारे को सत्य लगेगा, क्योंकि जो प्रतिबिंब है हमारे अंदर अक्ष है परमात्मा का, चेतन सत्ता जो हमारे अंदर है वो भासती क्यों नहीं है, उसका अनुभव क्यों नहीं होता, क्योंकि अंदर हमारे उसको ग्रहण करने की शक्ति नहीं है। जैसे सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो पड़ता तो सब जगह है लेकिन रोड में क्यों नहीं दिखाई पड़ता, फर्श में क्यों नहीं दिखाई पड़ता, वो पानी में दिखाई पड़ता है ना, तो रोड जो है फर्श है उसमें क्यों नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि उसमें ग्रहण करने की शक्ति नहीं है, वो उज्जवल नहीं है, स्वच्छ नहीं है, जो स्वच्छ होगा उसी में दिखाई पड़ेगा। तो हमारा जो अंतःकरण है उसमें ग्रहण करने की शक्ति नहीं आ रही ना, अंतःकरण में मलिनता है, वास्तव में तो अंतःकरण रहेगा ही नहीं बाद में, लेकिन पहले तो उसकी शुद्धि चाहिए ना, उसमें हमारे को प्रतिबिंब तभी भासेगा, अनुभव होगा। तो उसमें क्या भरा हुआ हम लोगों ने, असत्य जो पदार्थ है ना संसार के, उनकी वासनाएं उसमें पड़ी हुई है। तो जब तक हम इनको असत्य को सत्य मान रहे हैं तब तक सत्य की सिद्धि हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके ऊपर छाप लग गई, जहां जहां मेरी मेरी मेरा मेरा जहां लग गया वो रहने वाला नहीं कोई भी, जहां में मेरे की छाप लगी है वो नहीं रहेगा, तब्दील हो जाएगा। लेकिन सत्य होता असत्य कर मान्या, गुरु महाराज कहते हैं जो सत्य था उसको हमने असत्य मान लिया और जो असत्य था उसको सत्य मान लिया, उल्टा हमने अपने अंदर उसको ग्रहण कर लिया, अनुभव कर लिया, इसको हम सत्य मान करके, जैसे गुरु तेग बहादुर जी महाराज कहते हैं ना कि साधो रचना राम बनाई, एक बिनसे एक अस्थिर माने, एक देखते देखते हमारे मतलब तब्दील हो रहा जा रहा है, नाश हो रहा है, लेकिन एक अस्थिर माने, दूसरा अपने आप को स्थिर मान रहा है। इसलिए जब तक हम अपने आप को स्थिर मान रहे हैं, दूसरे को पार उसी के जो हुआ तू अपने भी जान, कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा मत समझना कि ये पड़ोसी के साथ ही हो रहा है, भाव पड़ोसी ही मर रहा है, हम नहीं मरेंगे, हमारे को ऐसा ही हो रहा है कि पड़ोसी मर रहा तो हमारे को कोई दुख नहीं होता, कोई गांव में हमारे शहर में कितने लोग मरते हैं हर रोज, किसी का कष्ट नहीं होता हमारे को। हाँ हमारे घर का जब हमारा जिसके साथ हमारी अटैचमेंट जब वो मरता है तब थोड़ी देर के लिए होता है, सदा के लिए तो नहीं होता, थोड़ी देर के लिए होता है, उसमें हमारे को वैराग्य होता है, क्षणिक वैराग्य होता है, क्योंकि उसके साथ हमारी अटैचमेंट है, संबंध हमने बना रखा उसके साथ, जिसके साथ हमारा संबंध नहीं है उसका हमारे को कष्ट भी नहीं है। तो जब हम इस संसार के साथ संबंध नहीं तोड़ेंगे जब तक, तब तक ये हमारे को सत्य लगेगा, क्योंकि संबंध हमारे मन का बनाया हुआ है ना, जिसके साथ हम संबंध बना लेते हैं उसको कभी भी मरना देखना नहीं चाहते और ना समझते हैं भी ये मरेगा, समझते भी नहीं है, ये तो है मालूम सामान्य रूप में भी मरेगा लेकिन अभी नहीं मरेगा, मरने का तो मालूम है कि हम भी मरेंगे, हमारा शरीर भी मरेगा, ये भी शरीर मरेगा, पर जब तक संबंध रहता है तब तक ऐसा महसूस नहीं होता, अनुभव नहीं होता। जब संबंध टूटता है ना तभी होता है, और संबंध जो है कैसे है, अध्यास से है ना, जैसे आपने अध्यास आगे पढ़ा है कि केवल जो धर्म का अध्यास है, धर्म से धर्मी का अध्यास है, केवल संबंध का अध्यास है, संबंध सहित संबंधी का अध्यास है, तो जितना अध्यास है जितना भ्रम है ये सब अज्ञान के कारण है। तो सकल दृश्य अध्यास, हमारे को अध्यास के कारण ही प्रतीत नहीं हो रहा कि ये जगत तीनों कालों में हुआ नहीं, अनेक प्रकार से हम श्रवण करते हैं अनेक प्रकार से, लेकिन अनुभव में नहीं आता, क्योंकि अनुभव के लिए हम यत्न नहीं करते, कहते तो हैं हम यत्न कर रहे हैं लेकिन यत्न होता नहीं है, जो हम यत्न कर रहे हैं ना वो केवल हमारी मान्यता के आधार पर हम करते हैं, जैसा हमारे को अच्छा लगता है वैसा मनन करते हैं ना, ये थोड़ी जो शास्त्र कहता उसको हम मनन करते हैं, जो हमारे को अच्छा लगता है उसको मनन करते हैं, तो हम अपनी बुद्धि से जो मनन करते हैं उससे जो छूटने वाला नहीं है, जो गुरु लोग हमारे को बतलाते हैं शास्त्रकार बतलाते हैं उसी के द्वारा ही यदि मनन करेंगे, जैसे कल भी आपको बता रहे थे कि जो वेद के महावाक्य हैं सतगुरु से उनको श्रवण करके उसका तात्पर्य निश्चय करना श्रवण है। ऐसे
नमस्कार जी महाराज,
ऐसे तो श्रवण हम करते ही रहते हैं लेकिन उसके तात्पर्य का निश्चय करना जो ऐसा श्रवण है, जैसा हम श्रवण करेंगे तब निश्चय होगा। तो बात ये चल रही थी कि सकल दृश्य सो अध्यास, पर संपूर्ण जो सकल दृश्य है वह अध्यास है, भ्रांति है, उसको ग्रंथकार कहते हैं कि छोड़ना, उसको त्यागना है। और कल भी हमने विचार किया था कि उसको त्यागना कैसे है। त्यागने का अर्थ ये नहीं है कि जगत जो हमारा है वह छूट जाएगा, कहीं अलोप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। छोड़ने का अर्थ ये थोड़ी है कि वो छोड़ने का मतलब हम छोड़ के कहीं भाग जाएंगे, जाएंगे कहाँ भाग के। छोड़ने का तो ये भी अर्थ होता ना कि हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। तो किसी आदमी को तो हम छोड़ के जा सकते हैं दूर, लेकिन इस प्रपंच को छोड़ के कहाँ जाएंगे। जहाँ भी जाएंगे वहाँ प्रपंच है ना, तीनों लोगों में भी जाएंगे तो तीनों लोग प्रपंच के अंदर आ जाते हैं, कहाँ जाएंगे छोड़ के। जहाँ से छोड़ करके हम चाहते हैं कि स्वर्ग में चले जाएं तो वहाँ सुख होगा, जो इच्छा करता स्वर्ग की इसलिए करता है ना कि वहाँ जा करके हमारे को भोग मिलेंगे। लेकिन वहाँ जा करके भी दुखी होता, सुखी तो होता नहीं है, क्यों वही प्रपंच है ना। स्वर्ग में जा करके कोई सुखी नहीं होता है, लगता है लोगों को कि सुख मिलता, वहाँ भी ईर्ष्या द्वेष है, ग्रंथकार कहते हैं। दूसरा कहता है इसको ज़्यादा मिला मेरे को कम मिला, वहाँ भी ये बात है स्वर्ग में भी। तो कहीं भी जाएंगे वहाँ से आपको भागना फिर पड़ेगा, तो छोड़ के कहाँ जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं तुद न छोड़ प्रभ जाइए कैधा, हे प्रभु तेरे को छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ। आन न बिया तेरी समसर, तेरे जैसा हो कोई भी नहीं है, और कोई हो तो जाऊँ, मैं जाऊँ कहाँ। भाव तेरे से छोड़ करके जहाँ भी जाएंगे वहाँ दुख ही दुख है। एक सुख स्वरूप एक प्रभु है, प्रभु मतलब हम आत्मा रूप से जब जानेंगे तो छोड़ना कहते हैं ये कि सकल दृश्य सो अध्यास। इसका तात्पर्य क्या हुआ, ये कहते हैं कि सकल जो दृश्य का अध्यास है उसको छोड़ना है, दृश्य को छोड़ना नहीं है, उसके अध्यास को छोड़ना है, उसकी भ्रांति को छोड़ना है। रहेंगे तो हम दृश्य, हम हमारा शरीर भी दृश्य है, जहां हम रहेंगे वो भी दृश्य है, उसको छोड़ना कहीं भागना नहीं है। उसकी जो भ्रांति है ना, जो उसमें हमने सत्यता रमणीयता मान रखी उसको छोड़ना है। हमारे को वो सत्य लगता है, प्रिय लगता है, आनंद रूप लगता है, ये बात उसमें से छोड़नी है। जो अध्यास पड़ा हुआ ना वो छोड़ना है, लेकिन अध्यास इतना गहरा पकड़ा हुआ हमने कि एक पर्दा नहीं है जहां से हम छोड़ के भाग जाएंगे। पीछे हमने विचार किया था ना, पांच कोश के पर्दे हैं, उनको छोड़ना, एक दरवाजा निकलेंगे तो चार दरवाजे और हैं। उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि गुरु अर्जन देव जी ने बात कही है कि एक कोश रो सिद्ध करत लाल तब चित्रपात रो आयो। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा एक कोश रो सिद्ध करत लाल, हे पिता गुरु जी यदि मैं एक कोश जो है ना ये वाला अन्नमय कोश आपकी कृपा से मैं इसको तोड़ा है ना, अभी इसको तोड़ा है मैंने, ये मेरा देह अध्यास अभी तक ये भी नहीं छूटा, यदि मानो यही छूट गया तब चतुर्पात रो आयो। उसके आगे चार पर्दे और हैं गुरु जी, उनको कैसे पार करूंगा जब तक आपकी कृपा नहीं होगी। एक पर्दा तो मैंने जैसे कैसे तोड़ा नहीं, अभी उसके चार आगे और हैं, तो पांच कोश है ना जो हमारे अंदर, उनको पार करना है। तीन अवस्था है जो उनको पार करना है, तीन शरीर हैं उनको तोड़ना है। कोई छोटा मोटा अभ्यास थोड़ी है भी छूट जाएगा, बात तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि मतलब देखेंगे तो प्रपंच बहुत बड़ा है, हमारे इसी का बहुत है, बात ब्रह्मांड की तो बात ही नहीं है। इसके तीन जो हमारी अवस्थाएं हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति, उसको समझेंगे। उसके बाद जो तीन शरीर हैं हमारे, इनको समझेंगे। हमारा जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, इन तीनों को पार करना पड़ेगा। पांच कोश हैं उनको पार करना पड़ेगा। बार का मतलब इनका अध्यास ही छोड़ना है। बात वही आ जाती है, हमारे को भ्रम है कि हम स्थूल शरीर हैं। भ्रम होता है स्थूल शरीर का, तभी हम कहते हैं मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ। ये अध्यास है ना हमारे को इस शरीर का, गोरा काला ये है, हम नहीं है। क्षत्रिय ब्राह्मण इसका नाम है, हमारा नाम नहीं है। राम सिंह श्याम सिंह जो कुछ भी नाम है इसका है, हमारा नहीं है। क्योंकि इस शरीर से पहले ये नाम नहीं था, इस शरीर के बाद में भी नाम नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके साथ हमारा अध्यास है, भ्रांति से हमने अपने आप को ये मान लिया। अभी तो हम इससे नहीं छूटे। ये कहते हैं ना कि महाजन जी बोल रहे थे कि ये हमारे को कभी ऐसा हुआ नहीं, कि तीनों कालों में हुआ नहीं, वो तो बहुत दूर की बात है। हमारे को तो इसका ही अभी ये नहीं कि ये नहीं हुआ, जो सूक्ष्म शरीर है उसकी तो बात ही अलग है। कभी ये भी हमारे को अनुभव नहीं हुआ कि ये शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर पांच तत्व का है, ये हमारे को कभी नहीं हुआ। पंक्ति सुन लेते हैं, पांच तत्व को तन रचो जानो चतुर सुजान, जय महाराज ने साथ में शर्त रखी है
कि पांच है, फिर भी इसकी सुविधा के लिए सारे जतन करता आदमी। हाँ जी, फिर भी शरीर को शरीर मानता है तो दुविधा कैसे जतन करता है ना?
शरीर को शरीर मानता जब तक तभी तो दुविधा है,
तभी सुविधा करता है ना?
हाँ,
तो उसने माना ही नहीं कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो माना हुआ है। कहने वो कहते हैं कि मैं शरीर तो माने, मानता
कहने से थोड़ी होता है, वही तो मैं कह रहा हूँ। कहने से क्या होता है?
कहने से कुछ नहीं होता।
जब शरीर को आप छोड़ देंगे ना, अलग हो जाएंगे, तब मैंने कल भी आपको कहा था जो छोड़ देता है ना उसके लक्षण नहीं है कोई,
उसने छोड़ भी नहीं देखता, वो
उसका पता चल जाता है, उसकी क्रियाकलाप से पता चलता है, उसके शिष्टाचार से, उसके चलने से, बैठने से, उठने से पता चलता है। और कोई निशानी नहीं है,
और कोई निशानी नहीं है
कि ये ब्रह्म ज्ञानी हो गया है। किसी ने बोला था एक बार काशी में कि कोई जीवन मुक्त महात्मा है, उसका कोई कहते उसकी कोई उदाहरण है, किसी ने बोला। हमारा एक विद्यार्थी था वहां पढ़ता किसी सन्यासियों के पास, मैंने कहा सिख धर्म तो भरा पड़ा है, मैं बताता हूं आपको। उन्होंने कहा कोई आपका ऐसा उदाहरण है? हमने कहा हमारे यहां तो पूरा इतिहास हमारा जीवन मुक्त महात्माओं से भरा हुआ है। और साक्षात उदाहरण मैंने कहा हम देंगे आपको कि जिन्होंने इस शरीर को नाशवंत माना है, कितने लोग हैं? सबसे पहले भाई मतीदास है। देखा ना आपने, जीवन मुक्त विदेह मुक्त महात्मा है कि नहीं? वो उनको दो फाड़ किया गया है आरे से, तो शरीर से अलग थे ना वो, इसलिए वो बैठे हैं समाधि लगा करके। भाई मनी सिंह हैं, तो जब उनका बंद बंद काटने लगे, वो यहां से काटने लगा था वो जल्लाद। उन्होंने कहा जो तेरे को आदेश है वो मानो, आपको हमारा बंद बंद काटने के लिए कहा है, हमारे साथ धोखा क्यों करते हो, यहां से क्यों काटते हो, यहां से काटो। तो क्या है वो जीवन मुक्त है कि नहीं, वो पता चलता है ना कि ये कैसे उन्होंने इसको मतलब असत्य माना है। उनके लिए तीनों कालों में संसार है ही नहीं, क्योंकि शरीर नहीं है उनके मत में। जब शरीर नहीं तभी तो कह रहे हैं ना, अभी कहीं से भी काटो कहीं से भी रखो, हमारे को क्या मतलब, हमारा इससे कोई संबंध ही नहीं है।
जब उन्होंने बच्चे को जिंदा कर दिया, गुरुदेव ने कहा अपने शरीर को छोड़ दे, मैं शरीर को छोड़ दूं,
बात
नहीं माना तो सुनो बोलता।
हाँ, वो तो बात है ही है, वो बात जो है ना बच्चे को जिंदा करने वाली बात, वो उनका तो कहना ही क्या है, वो लोग तो बहुत ऊपर थे,
बहुत ऊपर थे।
हाँ, लेकिन आम जो मतलब संसार में आता है ना जो, हाँ वैसे तो महात्मा भी नहीं का रूप होते हैं, और जो संसार में रहने वाले व्यवहार में रहने वाले है ना, वो कहते तो हैं कि महाराज हमारे को क्यों नहीं ब्रह्म ज्ञान हो सकता, हमारे को ही हो सकता है, लेकिन होता बहुत कठिन है। कहना बहुत सौखा होता, सरल होता है, करना बहुत कठिन होता है। होता है घर में रह करके भी, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। तो घर में रहने का मतलब घर को छोड़ के भागने के लिए कोई नहीं कहता। उस दिन हमने यही व्याख्या की थी ना गुरु गोविंद सिंह महाराज के वचन की, कि रेमन ऐसो कर सन्यासा, मन से सदन सबे कर समझो, मन ही माए उदासा। कहते घर में रहने का ये सन्यास है आपका, गुरु गोविंद सिंह जी कर्म कहते घर में रह के ऐसे सन्यासी बनो ना, घर को जंगल मानो आप, घर को जंगल मानोगे तब आप सन्यासी घर में रहते हो जाओगे। भाई भिखारी का प्रसंग आपने सुना होगा, नहीं सुना? भाई भिखारी जी एक गुरु अर्जुन देव जी के भक्त हुए हैं। एक बार गुरु अर्जुन देव जी के दरबार में जब बात चली, ऐसे जीवन मुक्त महात्मा कोई घर में रहने वाला कोई है, किसी ने पूछा तो महाराज जी ने कहा है। एक सिख ने कहा मेरे को दिखाओ महाराज जी, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। वो कहते तुम चले जाओ गुजरात में। महाराज जी ने कहा गुजरात एक जिला पड़ता है पाकिस्तान में, गुजरात नहीं, गुजरात जिला है। कहते गुजरात जिले में चले जाओ, वहां एक भिखारी नाम का हमारा भक्त है, उसके यहाँ चले जाओ, आपको उत्तर मिल जाएगा। वो चला गया, वहां पहुंच गया उनके घर में। जब वो पहुंचा तो उनके घर में उनके लड़के की शादी थी, उनके घर में मिठाई निकल रही है, कहीं मतलब माताएं शब्द गा रही है, कुछ कर रही है। वो एक कोने में बैठे थे, एक कोने में बैठे वो कफन सी रहे थे, कफन जो मुर्दे के ऊपर डालते वो सी रहे थे, अपने हाथ से सिल रहे थे वो। और जो खाद के बोरे होते ना, उनका एक बहुत बड़ा तप्पड़ जिसको हम बोलते हैं तप्पड़, एक बहुत बड़ा उन्होंने दरी बनाई उसकी अपने हाथ से छिल छिल के, वो ये एक तरफ रखी थी। और जब वो गया तो वो कफन सी रहे थे, सिल रहे थे। वो देख करके बहुत हैरान हुआ कि बात क्या है, उधर मिठाई निकल रही है, माताएं गा रही है, बाजे बज रहे, इधर ये हो रहा है। जब जा करके गया, उनको नमस्कार किया तो उन्होंने पूछा भी आप कहाँ से आए, बताया तो बहुत उनको चाव हुआ, उत्साह हुआ, हमारे गुरुजी का भक्त आया, उठ के सम्मान किया, बिठाया। तो वो कहता कि मैं किस लिए, कहते आए हैं, कहते इसलिए आया हूँ, कहते बैठो देखो। फिर उन्होंने कहा देखो, वो देखता रहा, उसने मतलब पूछा उनसे, वो कहते तेरे को अपने आप पता चल जाएगा ये क्या हो रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। दूसरे दिन उनके लड़के की बारात जानी थी, दूसरे दिन भाई साहब गए अपने लड़के को लेकर के बारात, विवाह करके शाम करके घर में लाए। जब शाम को आए तो आधी रात को लड़के के पेट में सूल हुआ तो लड़का मर गया, वही लड़का। वो लड़का मर गया तो वो जब कफन उन्होंने अपने हाथ से बनाया था, दूसरे दिन वही अपने लड़के के ऊपर डाल दिया, उसको उसको कपड़े पहना के ले गए शमशान घाट में। और जो तपड़ी बना के रखी थी बड़ी बड़ी, और जो लोग आए थे शोक करने के लिए उनके नीचे बिछा दी, पहले बना के रखी थी। बहुत हैरान हुआ देख करके, वो देखता रहा वो सारी बात, कि उनको पहले मालूम है सब कुछ, इसलिए तो बना के रखा है, कि सीढ़ी भी बना के रखी थी ऊपर डालने के लिए लड़के को। तो उनको विवाह गए तो तब भी कोई हर्ष नहीं है, तो उसको लड़के को लेके जा रहे हैं शमशान में तो कोई शोक नहीं है, वो अपनी मस्ती में चल रहे हैं, दोनों आस्था में एक जैसे हैं। तो उसने जब सारा क्रियाकर्म करके आ गए, लोग बैठ गए सब तप्पड़ के ऊपर बैठ गए, तो उसने पूछा कि भाई साहब मेरे को एक शंका है, मैं पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बताओ। कहते यदि आपको मालूम था कि हमारा लड़का जो है इसने बचना नहीं है, तो आप गुरुजी से इसकी उम्र बड़ी करा लेते, मांग लेते, आप उनके भक्त हैं। और यदि आपको ऐसा नहीं करना था तो आपको मालूम था कि इसने रहना, तो आप इसकी शादी मत करते। उन्होंने कहा भाई साहब आप तो जहां सोचते हैं ठीक है बात, इसलिए तो आप कुमारी ने यहां भेजा है, ये प्रभु की रजा है। जो गुरमुख होते हैं वो रजा में रहते हैं, वो हर्ष शोक में सम रहते हैं, हमारे को सब मालूम था, लेकिन प्रभु की रजा में दखल नहीं दिया जाता कभी भी। जैसे आप कहते हैं ना, उन्होंने कहा था यदि इसको जिंदा किया है या तो आपको जाना पड़ेगा या मेरे को जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु की रजा में दखल नहीं दिया जाता, उसको बड़े प्रेम से माना जाता है, क्योंकि प्रभु कभी भी किसी के साथ वैर भाव नहीं करते, द्वेष नहीं करते कि बड़े लोगों को मारेंगे या छोटे को मारेंगे, ऐसा उनका नहीं है। वो तो जो करते हैं केवल भला करते हैं, हमारे कर्मों का फल होता है जो हमारे को भुगतना पड़ता है। तो तब उन्होंने कहा कि ये होती है समावस्था, इसको कहते हैं घर में रह करके जीवन मुक्ति का आनंद वो लोग लेते हैं, ना उनको हर्ष है ना शोक है, प्रभु की आज्ञा आत्महितावे जीवन मुक्त सोऊ कहावे, है ना सुखमनी साहब की पंक्ति है, प्रभु की आज्ञा आत्महितावे, प्रभु की जो आज्ञा प्रभु की वो आत्म कल्याण मानता है उसको, उसको कहने जीवन मुक्त सोऊ कहावे, कैसा हो तैसा हरक तैसा उस सोग, क्या कुछ लिखा है महाराज जी ने, ना उसको स्वर्ण में ना मिट्टी में ना लोहे में ना मान में ना अपमान में, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि प्रभु की रजा को मेन मानता है उसको, उसको गुरुमुख कहते हैं, गुरु के सन्मुख रहता है वो। तो बात यह हो गई, यहां बात चल रही अध्यास की, कि सकल दृश्य सो अध्यास छोड़ना। तो छोड़ने का अर्थ यही बात है कि इसकी आसक्ति को त्यागना है, छोड़ के भागना नहीं है। देख देख जग ढूंढ्या कहूं ना पाया ठौर, कहते हैं ना कबीर साहब कहते हैं, देख देख जग ढूंढ्या कहूं ना पाया ठौर, पूरा घूम के मैंने देख लिया लेकिन स्थिति नहीं मिली, कहीं भी मेरे को टिकाव नहीं मिला। कबीर जाको खोजते पायो सोई ठौर, जिसको खोजते थे ना बाहर पायो सोई ठौर, वहीं पाया मैंने, पूरा संसार ढूंढ के देख लिया कहीं भी नहीं मिला। मिला कहां, जिसको खोजने गए थे वो वहीं मिला जहां था। तो हम तो बाहर ढूंढते हैं ना, तो कहते हैं महाराज जी कि सब किस घर में बाहर ना ही, बाहर टोले सो भ्रम भुला ही। जो बाहर खोजता है ना वो अध्यास है, भ्रम शब्द आ गया ना, मारे कहते वो भ्रम में है, वो तो अध्यास में घूम रहा है। सब किस घर में, सब किस तेरे अंदर है, घाट में, घर में मतलब हृदय में है, बाहर मत तुम ढूंढो। लेकिन बाहर ढूंढता है तब तक जब तक उसको मुर्शद नहीं मिलता, गुरु नहीं मिलता। जब गुरु मिलता है तो फिर क्या होता है, बाहर ढूंढनते छूट परे गुर घर ही माए दिखाया था, गुरबाणी कहती है बात। जब गुरु मिल गया तो घर ही माए दिखाया था, उन्होंने अंदर ही अपने प्रकट कर दिया, दिखा दिया कि तेरे घर में, तेरे हृदय में है सब, बाहर नहीं है। तो हम लोग बाहर घूमते हैं। अध्यास छोड़ना, इसको छोड़ने का मतलब आसक्ति छोड़नी, हमने जो सकल दृश्य है ना प्रपंच, इसकी हमने आसक्ति छोड़नी है। ये पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा, मध्य में भासता है। जो चीज मध्य में होती है वो कभी भी सत्य नहीं होती, जो पहले होती है बाद में होती है। ऐसी क्या चीज है, वो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, वो है, पहले भी था अभी भी है आगे भी रहेगा। उसकी बात करते हैं कि जग आधार में चित्त जोड़ना, ऐसा जो जगत का आधार है उसके साथ अपने चित्त को जोड़ना है। जोड़ने का मतलब वही हुआ कि इसकी आसक्ति छोड़ दो और उसका निर्णय कर लो, इसका मिथ्या का निश्चय कर लो, उसका सत्य का निश्चय कर लो। इसी का नाम विवेक है, सत्य सत्य वस्तु का अलग अलग जानना ही विवेक है। और विवेक कहाँ से मिलता है, सत्संग से, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं हुई। और ये सत्संग और वो सत्संग वही हमने आपको बताया था, ये भी सत्संग है लेकिन ये साधन रूप सत्संग है, साध्य रूप नहीं है। जो सत्संग हम कर रहे हैं ये साधन रूप सत्संग है, और इससे जो हमने पाना क्या है, जो साध्य रूप सत्संग है। साधन और साध्य का अर्थ समझते हैं, नहीं समझते ना। साधन होता है जिसके द्वारा हम कहीं जाते हैं, कहते ना कोई साधन चाहिए हमारे को जाने के लिए, साइकिल है, स्कूटर है, वो साधन है ना, जहां हमने पहुंचना है, जहां पहुंचना उसको साध्य कहते हैं। तो साधन होता है जिसके द्वारा जाया जाता है, और साध्य होता है जहां पहुंचना होता है। तो सत का सांग हमने सत के साथ भेद होना है, वो हमारा साध्य है। और ये जो सत्संग है, ये साधन है, इसके द्वारा हमने सत के साथ अभेद होना है, इसलिए उसका साधन होने से इसको भी सत्संग कह देते हैं। ये साधन रूप है, वो फल रूप है, इसलिए इसको कह देते हैं सत्संग, कि इसके द्वारा हम सत के साथ अभेद हो जाएंगे। ये कहते हैं कि जग आधार में चित्त जोड़ना, अपने चित्त को उसके साथ जोड़ना। और चित्त और चित्त दो चीजें होती है, चित्त एक ऐसा होता है जिसके दो तकार लगे होते हैं, जिसमें चित्त और एक होता चित्त, एक ही तकार होता है। और चित्त जहां दो तकार है उसका अर्थ है अंताकरण, जहां एक तकार उसका अर्थ है चैतन्य, जो चेतन है। ये माया के साथ जब जुड़ता है तो इसको चित्त कहते हैं। माया विशिष्ट जो हो गया ना जीव, जो चेतन माया विशिष्ट अंताकरण विशिष्ट जो हो गया, उसको चित्त कहते हैं। और जो उसके अंतःकरण से अलग है साक्षी उसको चित्त, तो ये कहते हैं कि जग आधार में चित्त जोड़ना। भाव अपने आप को जो जिसको जीव मान रहे हो ना, अपने आप को उसको जग के आधार के साथ, तो जोड़ने का अर्थ यहां वही हुआ कि उसके साथ साक्षी और ब्रह्म का जो है ना महावाक्य के द्वारा एकता करनी। जोड़ने का मतलब क्या हुआ, उसके साथ ऐक्य करना, एकता करना, परमात्मा के साथ अपने आप की एकता करनी। एकता तभी होगी, परमात्मा और हम एक क्यों नहीं हो पा रहे। हम कहते हैं वो परमात्मा है, हम जीव हैं, तो हमारे में पर्दा कौन सा है। जब ग्रंथकार कहते हैं कि तू जीव नहीं है, तू ब्रह्म है, तो फिर हम अपने आप को ब्रह्म क्यों नहीं मान रहे। इतनी तो बात है ना, हम अपने आप को जीव मानते हैं और महात्मा लोग कहते हैं तुम जीव नहीं हो। बात तो इतनी है, उनकी बात हम समझ जाएंगे तो तब हम बाद में क्या हो जाता हमारे को। जब हम समझ जाते हैं तो होता क्या है, कोई बदल थोड़ी जाते हैं, हम बदले नहीं है महात्मा के कहने से, बदले कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं बदला हमारा, हम बने नहीं है। हम ये कहेंगे कि हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए, कोई ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है क्या। जो भी चीज कोई बनती है ना बिगड़ जाती है कभी भी, यदि वो हो जाएगा तो फिर हट जाएगा, होता नहीं है। कोई भी चीज हम बनाएंगे ना तो बिगड़ जाती है, उसको बिगाड़ सकते हैं हम, जो हमारे यत्न से हो जाएगी ना वो बिगड़ जाती है। हम कुछ भी नहीं होते हैं, जैसे थे वैसे ही हैं, केवल हम अपनी मान्यता को हटाते हैं बस। महात्मा कहते जो तुम मान रहे हो इसको हटा दो, मान्यता से हम इसका खंडन कर देते हैं और कुछ होता नहीं है। पहले भी हमने आपको यही कहा था, जो ज्ञान है वो किसी का विरोधी नहीं है, जो ज्ञान है वो अविद्या का विरोधी नहीं है, अज्ञान का विरोधी नहीं है, तो अज्ञान को निवृत्त कैसे करेगा, नहीं ना करेगा। जो किसी का विरोधी होता है उसको हटाएगा ना, समझते हैं। जो किसी का विरोधी आदमी होता उसको वहां से भगाएगा कि नहीं, तो जिसका किसी के साथ विरोध नहीं हो उसको कहेगा तुम भी जहां रहो हम भी जहां रहते हैं, आपके रहने से हमारे को कोई परेशानी नहीं है। तो ज्ञान कैसे अज्ञान को हटाएगा, उसका विरोधी नहीं है। समझ आई बात, ज्ञान कभी भी अज्ञान का विरोधी नहीं होता, इसलिए वो हटा नहीं सकता। और कर्म से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती, ना उपासना से होती है, कर्म से भी नहीं होती, क्योंकि कर्म होते ही अज्ञान से हैं, उपासना होती है ज्ञान में है, तो वह भी नहीं उसको हटा सकते और ज्ञान भी नहीं हटा सकता, हटेगा कैसे। जो अज्ञान है उसको ना कर्म हटा सकते हैं, ना उपासना हटा सकती है, ना ज्ञान ही उसका विरोधी है, ज्ञान भी उसका विरोधी नहीं है। क्योंकि यदि विरोधी होगा ना ज्ञान उसका, तो उसको प्रकाशित कौन करेगा। यही अज्ञान है कि मैं अज्ञानी हूं, ये अज्ञान है ना, मैं अज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी, इतना अज्ञान है ना, इसको प्रकाशित कौन कर रहा है, हूं मैं अज्ञानी हूं, जो हूं लगा है ना साथ में, ये ज्ञान है कि नहीं। अज्ञान को प्रकाशित तभी कर रहा है, इसका विरोधी नहीं है वो, यदि विरोधी होता तो उसको प्रकाशित नहीं करता, रहता नहीं उसके साथ में, और रहेगा कैसे, उसका अंधकार की तरह प्रकाश की तरह विरोध है, लेकिन साथ में उसको प्रकाश वो कर रहा है, मैंने कुछ नहीं जाना, मेरे को कुछ नहीं पता चला, इसको कौन प्रकाश कर रहा, ज्ञान। इसलिए जो सामान्य ज्ञान है वो अज्ञान का विरोधी नहीं होता कभी भी, विशिष्ट ज्ञान जो है विरोधी होता है, समझ गए। विशिष्ट ज्ञान ही अज्ञान का विरोधी होता है, सामान्य ज्ञान नहीं। सामान्य ज्ञान तो उसका प्रकाश है, उसका पोषक है, घाट है, घाट है जब बोलते हैं तब भी है ज्ञान, घाट नहीं है, घाट नहीं है, अभाव अज्ञान है कि नहीं, उसको प्रकाशित कर रहा है। तो विशिष्ट ज्ञान विरोधी होता है, सामान्य ज्ञान नहीं होता किसी भी चीज का। तो हमारे को सामान्य ज्ञान है अपनी आत्मा का, है ना, सबको। बच्चे को भी पूछो कि तुम हो, कभी भी कोई बच्चा ये नहीं कहता कि मैं नहीं हूं। जिसने कोई शास्त्र भी नहीं पढ़ा ना बच्चे को, उसको पूछो तो कहता मैं हूं। इसका मतलब उसको सामान्य ज्ञान है कि नहीं, हम लोगों को भी सामान्य ज्ञान है, इसलिए हमारा प्रपंच का अभाव नहीं हो रहा। कह रहे थे ना महाजन जी कि जहां से आपने छोड़ा मैं वहां से शुरू करता हूं, मैंने कहा तुम बैठो ना यहाँ, फिर पता चलता है। वो कह रहे थे ना कल कि जहां से आपने छोड़ा मैं उसको खोलता हूँ। हमने कहा खोलने की ऐसे बात नहीं होती, शास्त्र जब लगा होता है, पड़ा होता महात्माओं के साथ, हमने कहा 20 साल हमने महात्माओं की लंगोटी धोई है,
ये खोलने का अहंकार
है, कहने से नहीं होता है। हमने कभी नहीं ऐसा माना कि हमारे को कुछ आता है, हम तो माना नहीं। 20 साल हमारे को पढ़ते हो गए तो हम जब महात्मा के पास जाते जीरो मान के जाते हैं अपने को, जीरो जीरो मान के जाते हैं। वो कहते हैं कि विशिष्ट ज्ञान जो है वो वृद्धि होता है, सामान्य ज्ञान तो हमको है, क्यों हम आत्मा के पास जाते हैं, किस लिए जाते हैं? सामान्य ज्ञान तो सबको है कि मैं आत्मा हूं, थोड़ी कहते हैं। इतना हमारे को मालूम है कि आत्मा नाम की कोई चीज है, परमात्मा नाम की कोई चीज है। जब कोई हमारे को पूछता है ना कमरे में पड़े हुए रात को कि तुम अंदर कौन है, तो हम कहते मैं हूं। कभी कहते कि मेरे को लाइट जगा के देखने दो भी कौन है, बोलते ना तुरंत मैं हूं। तो मैं हूं का मतलब क्या, मैं आत्मा हूं, इतना नहीं बोल पाते, लेकिन सामान्य रूप में हमारे को ज्ञान है। यदि हम स्वयं प्रकाश हैं तभी तो कहते हैं ना। जब कोई कहता कि आपके कमरे में कहीं एक जगह घड़ा पड़ा है, देखिए लाइट, तो हम कहते लाइट जगाने दो, तब देखें कहाँ पड़ा है। उस जड़ पदार्थ को देखने के लिए हम कहते हैं कि लाइट चाहिए। अपने को जब कोई बोलता तो हम कहते मैं हूं, लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब हम प्रकाश है ना स्वयं, लेकिन हमारे को सामान्य ज्ञान है कि मैं हूं, मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान नहीं है। मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान नहीं है। ये जो विशिष्ट ज्ञान है ये हमारे ज्ञान को तोड़ेगा। सामान्य ज्ञान से हम नहीं इसको नष्ट कर पा रहे। और विशिष्ट ज्ञान का अर्थ होता है जो वृत्ति ज्ञान है, वृत्ति ज्ञान। जब हमारी वृत्ति ब्रह्माकार होगी तब इस प्रपंच का अभाव हो जाएगा। और विशिष्ट ज्ञान जो है वो केवल बाद में वही नहीं रहता, विशेषण ज्ञान जो है विशिष्ट ज्ञान में कारण होता है। विशेषण ज्ञान जो होता है विशिष्ट बुद्धि में कारण होता है। जैसे कोई एक आदमी जा रहा है, उसके हाथ में छतरी है उसके हाथ में, तो हम क्या बोलते हैं, छतरी वाला पुरुष जा रहा है। तो विशेषण जो छतरी है ना, उसका ज्ञान कराने के लिए है कि नहीं कि यह छतरी वाला है। छतरी वाले का ज्ञान कराने में कौन कारण है, छतरी। तो जब ब्रह्म का ज्ञान हमने करना है ना, तो ब्रह्माकार बुद्धि चाहिए, कोई विशेषण चाहिए ना हमारे को, विशेषण चाहिए कोई कि ब्रह्म सत्यत आनंद है, ऐसा मैं हूं, सत्यत आनंद मैं हूं, तब हम जानेंगे ना कि मैं। तो इसका मतलब विशेष ज्ञान नहीं, विशिष्ट ज्ञान जो है वो हमारे को होता, तब हम जानते हैं कि मैं ब्रह्म हूं। सामान्य ज्ञान तो हमारे को है, सामान्य ज्ञान है लेकिन विशेष ज्ञान नहीं है। कहते हैं शास्त्रकार कि ब्रह्म तो किसी प्रमाण का विषय नहीं है, तो बुद्धि का विषय कैसे बनेगा। शंकराचार्य जी ने ये बात उठाई कि वो शंकराचार्य कहते, जब आप कहते कि वो स्वयं प्रकाश है, किसी का विषय नहीं, तो बुद्धि का विषय कैसे बनेगा, वो नहीं बन सकता। जब बुद्धि का विषय नहीं तो शास्त्र गुरु सब व्यर्थ हो गए, कोई फायदा ही नहीं शास्त्र लिखने का, बुद्धि का विषय नहीं बनेगा तो शास्त्र किस लिए लिखे। तो उन्होंने उत्तर दिया कि बुद्धि का विषय नहीं है, सामान्य रूप से विषय नहीं है, विशेष रूप से विषय है, सामान्य रूप से नहीं है विषय। सामान्य रूप से हमारे को ज्ञान है और विशेष रूप से अज्ञान है। यही बात जहां पर है रस्सी में सर्प की, हमारे को सामान्य रूप से ज्ञान है कि यहां कुछ पड़ा है, विशेष रूप से ज्ञान नहीं है कि रस्सी पड़ी है। यही बात है ना, हमारी बुद्धि तभी भ्रमित हो जाती है ना कि जहां कुछ पड़ा है। सामान्य रूप से तो जानते हैं हम, थोड़ा सा अंधेरा है और थोड़ा सा प्रकाश है, तो इसलिए हमारे को ये हो रहा कि कुछ पड़ा है यहाँ, और हमारे को कुछ पड़ा है और पीछे वाले संस्कार हैं, कभी हमने सर्प देखा था। अध्यास का लक्षण ये किया एक जगह, स्मृति रूपा पूर्व दृष्टा अवभाषा अध्यासा। जो स्मृति रूप होता है, पूर्व कहीं देखा होता है, उसको अध्यास कहते हैं। तो पहले हमने सुना था, सर्प कहीं देखा था, उसकी स्मृति हो गई हमारे को, सर्प ऐसा होता है और देखा था हमने, और यहाँ पर हमारे को सामान्य रूप से ज्ञान है, कुछ पड़ा है, तो इसलिए हमारे को सर्प दिखने लगा। जब हमारे को विशेष ज्ञान हुआ, लाइट लाने से भी ये रस्सी है, तो उसका भ्रम समाप्त हो गया। सामान्य ज्ञान ने तो नहीं हटाया ना सर्प को, सामान्य ज्ञान तो था हमारे को कि कुछ पड़ा है जहां, विशेष ज्ञान नहीं था इसलिए सर्प आ गया। जब विशेष ज्ञान हुआ तो सर्प कहीं भी नहीं है। तो कहते हैं राज भयंग प्रसंग जैसे है अवकश मर्म जनाया, रविदास जी महाराज कहते हैं कि राज भयंग प्रसंग जैसे है रज्जू, राज मतलब रज्जू, भयंग मतलब सर्प, कहते जैसे रज्जू सर्प का जैसे है ना भेद, जो उसका रहस्य था अवकश मर्म जनाया। अब मेरे को गुरुओं की शरण में आने का मौका मिला है तो अब मेरे को पता चला है कि ये जो मेरे को भ्रम हुआ था नरप्रत्येक सिंहासन सोया, ये राजभयंग जैसा था, जैसे रज्जू में सर्प का भ्रम है ऐसा ही था, हुआ कुछ भी नहीं है। तो हमारे साथ भी ये हो रहा है कि सामान्य ज्ञान हमारे को है, विशेष ज्ञान नहीं है। ये जो विशेष ज्ञान है उसी से हमारा अध्यास टूटेगा, तभी हम जो है इस सकल दृश्य अध्यास को छोड़ करके, तो जो हमारा जगत का आधार है वो तो हम स्वयं है ना आधार, उसके साथ हमारा चित्त जुड़ेगा, भाव हमारी एकता ऐक्य होगा। विशिष्ट ज्ञान से, विशेष ज्ञान से महाभाव हमारी बुद्धि जब ब्रह्माकार हो जाएगी ना, अभी हमारी बुद्धि ब्रह्माकार नहीं है, अब जीवाकार है, कभी घटाकार, कभी पटाकार, कभी कोठी का आकार, कभी मतलब पुत्र का आकार, कभी धी पत्नी का, सबका आकार धारण कर रही है ना, जहाँ जहाँ जाती है उसके साथ जुड़ जाती है। जब स्कूल में जाते हैं तो हम मास्टर हो जाते हैं, घर में आते हैं तो सबकी दृष्टि में अलग अलग हो जाते हैं, जब पुत्र मिलता है उसके लिए हम पिता हो जाते हैं, मान रहे ना अपने आप को, है कहाँ, एक ही आदमी इतने रूप कहाँ बन जाएगा बताइए आप। पुत्र के सामने जाते तो हम पिता बन के जाते हैं, पत्नी के सामने जाते हैं तो पति बन के जाते हैं, मानते हैं ना ऐसा अपने आप को, आदमी तो वही है। स्कूल में जाते हैं तो हम टीचर बन जाते हैं, है कहाँ, आदमी एक ही और कितनी की बार बदलेगा, अपने आप को पति मान रहा है, पुत्र भी मान रहा है, पिता मान रहा है, दादा मान रहा है, टीचर भी मान रहा है, तो क्या क्या मान रहा है वो, मानता ही है ना, बदला थोड़ी है कि टीचर बनते समय और हो गया, पति बनते समय और हो गया, है तो हम ढांचा तो हमारा वैसा ही है। इसका मतलब क्या, झूठा मानते कि नहीं, हम कभी हमने अंदाजा ही नहीं लगाया कि हम, हमारा कुछ भी बदला नहीं है, लेकिन हम मन के अंदर बदलते जाते हैं, हमारे भाव बदल जाते हैं। बहन के पास जाते तो हमारा भाव और होता है, पत्नी के पास जाते तो हमारा भाव और होता है, भाव ही तो बदलता है ना केवल हमारे मन का, हम नहीं बदलते, हमारा ढांचा नहीं बदलता, वैसे का वैसा ही रहता है, लेकिन हमारी मान्यता बदल जाती है। इसी मान्यता को तो हटाना है, ऐसे ही हमने अपने आप को जीव मान लिया है, जैसे हम मास्टर बन गए, पति बन गए, पिता बन गए, पुत्र बन गए, माना है ना, ऐसे ही हमने जीव माना है, अपने आप को है नहीं। जब उस बात को लौकिक व्यवहार को समझ जाएंगे कि हमारा नाम अलग अलग केवल हमारे भाव से पड़ रहा है, हम है नहीं है, ऐसे ही हम जीव नहीं है, मान लिया हमने,
जुड़ने के साथ हम,
जब जुड़ गए ना जिस जिसके साथ
उसका बदलते गए,
वैसे ही हम अपने आप को बदलते गए, हमारा अटैचमेंट होता गया उनके साथ, तो है तो अशक्ति है हमारी ना। आज ही आप पत्नी से छोड़ देते हैं तो आपका तलाक हो जाता है, तो आप उसके लिए पति नहीं रहते, उसके लिए नहीं रहते ना, आपने मन से हटा दिया कि मैं इसका पति नहीं हूं, पहले थे आप 2 महीने पहले, तो क्या हुआ, आप तो वैसे के वैसे ही बदले थोड़ी हैं, अपने भाव बदल दिया आपने कि मैं पति नहीं हूं, उनका भी भाव बदल गया कि मैं इनकी पत्नी नहीं, तो ना आपके शरीर में कोई अंतर पड़ा ना उनके शरीर में कोई अंतर पड़ा, बदले थोड़ी हैं, अपनी मान्यता को हटा दिया आपने, तो इसका मतलब झूठा माना था हमने, झूठा माना था उसको तभी हमने छोड़ दिया, यदि सत्य होता तो कभी छूटता ही नहीं, सत्य वस्तु कभी नाश नहीं होती, झूठी थी इसलिए छूट गई। तो झूठे को हमने सत्य मान के जितना हम व्यवहार करते हैं ना, ये सब झूठे को हमने सत्य मान के करते हैं, जहां जहां से हमारा संबंध टूटता जाता है उसको हम छोड़ते जाते हैं, संपूर्ण से छोड़ देंगे तो संपूर्ण छूट जाएगा, जिस दिन हमने छोड़ दिया इसको तो सकल दृश्य अध्यास छूट जाएगा, तो जब छूट जाएगा तो हम ही बचेंगे केवल, वही तो जगत का आधार है, उसी में ये भास रहा है। तो ये कहते जग आधार में चित्त जोड़ना, दो पंक्ति जहां तक हुई है इसकी, पहले आपने कहा था जल्दी चला दिया इसलिए धीरे धीरे चला रहे हैं। अब त्रय दशा ही जो जागृत आदि हैं, तीसरी पंक्ति यह है कि तीन दशा अवस्था, जो तीन अवस्था है ना, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, याद रहेगा, एक जागृत है, एक स्वप्न है, एक सुषुप्ति है। जागृत किसको कहते हैं, जागते हुए, जिस समय हम जाग रहे हैं ना, अभी हम जाग रहे हैं, तो इस जागृत में जो व्यवहार हो रहा है ना, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा जो व्यवहार जिस समय में होता है, स्पष्ट रूप में होता है, उसको जागृत कहते हैं। जिस काल में व्यवहार इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा जागृत समय में होता है, जागते हुए होता है, स्पष्ट रूप में होता है, दिखता है, उसको जागृत कहते हैं। और जिस समय ये हमारी इंद्रियां सो जाती हैं, हम सो जाते हैं भाव, तो स्वप्न उसको बोलते हैं जब इस इंद्रियां ये काम नहीं करती, केवल मन काम करता है। जो कुछ हम देखते हैं वो मन के द्वारा देखते हैं, इंद्रियों से नहीं, और स्पष्ट रूप में नहीं होता, अस्पष्ट रूप में होता, पूरा नहीं दिखाई पड़ता, जैसे दिन में पड़ता वैसा नहीं, उसको स्वप्न कहते हैं। और जहां पर जाकर के हमारा मन भी लय हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता, कोई इंद्रिय नहीं बचता मन के साथ, केवल हमारा ज्ञान स्वरूप ही बचता है और अज्ञान दोनों बचते हैं, उसको सुषुप्ति कहते हैं। जब हम गाढ़ निंद्रा में जाते हैं ना, कभी कभी इतनी निंद्रा आती है हमारे को, हम कहते हैं हमारे को पता नहीं चला, तो वहां हमारे ये कान नाक आंख कुछ भी नहीं था, मन भी नहीं था, मन भी काम नहीं कर रहा था वहां, उसको कहते हैं सुषुप्ति। तो ये तीन अवस्था त्रयदशा ही जो जागृत आदि हैं, सब परपंच सो भिन्न ना ही हैं। ये कहते हैं कि जितना परपंच है ना दिखाई पड़ रहा, ये तीनों अवस्थाओं से भिन्न नहीं है, पूरा तिनी इन्हीं के अंदर आ जाता है, तीन अवस्थाओं में आ जाता है पूरा प्रपंच, जितना भी है भाव। जागृत में सारा प्रपंच कहाँ है, जागृत अवस्था ही तो है ना, जितना व्यवहार हो रहा है प्रपंच का जागृत में, वो जागृत हमारी अवस्था से भिन्न कहीं है, हम जाग रहे हैं तो व्यवहार है ना, तो पूरे प्रपंच का व्यवहार है, तो इसका मतलब प्रपंच कहाँ है, कोई अलग प्रपंच नाम की चीज कोई नहीं है, केवल हमारी इंद्रिय, हमारे अंतःकरण, ये मिलकर के ही इसने बनाया हुआ है, प्रपंच है नहीं है। हमने मन से माना है ना, और जिस जिसको माना है, जो हमारे को सामने दिखाई पड़ता है उसको हम मानते जाते हैं, इंद्रियां जिसको देखती हैं वो मन को दे देती है, तो मन जो है बुद्धि को दे देता है, बुद्धि निश्चय कर लेती है कि ये फलानी चीज है, ये चीज है, ये चीज है। तो जागृत से भिन्न है क्या, कुछ भी नहीं ना है प्रपंच नाम की चीज। जब हमारे इंद्रिय, भले हम जाग रहे हैं, हमारी आंखें खुली हुई हैं, हमारे कान सुन रहे हैं, हमारा मन में काम कर रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम, हमारी आंखें भी खुली होती है, कान भी हमारे सुन रहे होते हैं, लेकिन मन वहां नहीं होता, तो देखते हुए कोई पूछता तो हम कहते मैंने देखा नहीं है, आगे से निकल जाता आदमी तब भी हम कहते मैंने नहीं देखा, आंखें तो हमारी खुली हुई थी। इसका मतलब हम जागृत में, जागृत में बीच के सुपन में चले गए थे, जागते हुए सुपन में चले गए थे ना, जाग रहे थे तब भी सपने में चले गए। सपने का मतलब यह था कि जागृत होते हुए हमारी अटैचमेंट कहीं और हो गई, हमारी कल्पना जो थी ना वो कल्पना बदल गई है, तो कल्पना मात्र हुआ ना संसार, फिर क्या हुआ, हमारी कल्पना, हमारा संकल्प ही तो हुआ, हम आंखें खोल के बैठे हुए कहीं कल्पना और की उठा रहे हैं, तो जहां हमारी कल्पना होती वही संसार है, बिना कल्पना के ना कोई संसार है ही नहीं है, कल्पना छोड़ दो तो संसार कहाँ है, संकल्प जब समाप्त हो जाता है तो संसार की नाम की चीज ही नहीं है कोई, संकल्प विकल्पो ही मन, ये मन का लक्षण है, मन की परिभाषा है कि मैं ये करूं मैं ये ना करूं, इसी को मन कहते हैं, ये करूं ये ना करूं इसी को मन कहते हैं। तो जब फुरना रुक जाता है तो कुछ भी नहीं रहता, फुरना जब समाप्त हो जाता है तो कुछ भी नहीं रहता, ये तो केवल फुरने का ही संसार है। जहां पर कुछ भी फुरना नहीं रहता, संकल्प नहीं रहता, जब आपका संकल्प समाप्त हुआ तो संसार नाम की कोई चीज नहीं है, हमारे संकल्प से हो रहा है। इसी प्रकार जो हमारी स्वप्न अवस्था है, स्वप्न अवस्था में हम क्या देखते हैं, कोई संसार नाम की चीज वहां है सपने में? ये जो हाथी घोड़े जो दिखते हैं वहां, वहां होते हैं क्या? मानो आप बहुत ज्यादा भोजन आपने भंडारा खाया कहीं सपने में, इतने राज के कि आपका मन नहीं करता, थोड़ी देर में उठते हैं तो कहते हैं हमारे को भूख लगी है। सपने में हम पूरा रज गए एकदम, लेकिन उठते सारे हमारे को भूख लग गई, तो कहाँ गया वो पदार्थ जो खाया था? यदि वो सत्य होता तो भूख क्यों लगती? सपने में तो हम रज के रजे हैं पूरे, लेकिन उठ के ही उसी में भूख लगती है। और कभी कभी ऐसा होता कि हम रज के सोए हैं, पूरा रज के एकदम सोए हैं, और सपने में हम मर रहे हैं भूखे, तो वो जो खाया था वो कहाँ गया? ये केवल सपने की बात नहीं है, जागृत में हम रात को पूरा राशन खा करके सोए हैं और सपने में मांग रहे हैं कि मैं भूखा मर रहा हूं, तो इतनी जल्दी वो पदार्थ कहाँ गया? इसका मतलब जागृत वाला भी स्वप्न था, जागृत वाला भी स्वप्न था कि नहीं, झूठा था कि नहीं? वो भूख क्यों लगी? सपने में हम रजे हैं तो जागृत में भूखे हो गए, लेकिन जागृत में अभी सोए हैं रज करके, तो उसी समय स्वप्न आया तो हम भूखे मर रहे हैं, तो वह जागृत वाला कहाँ गया? इसका मतलब वो भी झूठा था, इसलिए भूख लग गई। तो यह भी स्वप्न है, जागृत भी स्वप्न है, स्वप्न तो स्वप्न है ही है, जागृत भी स्वप्न है, वो थोड़ा स्वप्न है, ये लंबा स्वप्न है, ये भी स्वप्न, मिथ्या भ्रम और स्वप्न मनोवर्थ है, ये स्वप्न जैसा है, मिथ्या है, मनोवर्थ कहते संकल्प मात्र है। लोगों को ऐसा संकल्प हुआ, सत पदार्थ जानिया, हम लोगों ने इसको सत्य मान लिया, हमारे संकल्प में सत्य बैठ गया, ये सत्य है, ये कभी जाने वाला नहीं है, ऐसा हमारे संकल्प हो गया ना मन में, लेकिन देख लिया हम, अनुभव भी कर रहे हैं कि स्वप्न में खा के सोए हैं तो जागृत में उठ करके भूखे हैं, और जागृत में खा के सोए हैं, जागृत में हम धनी हैं, जागृत में हमारे पास कारें कोठिए पैसा बहुत है, लेकिन स्वप्न में हम भीख मांग रहे हैं कि पैसा कोई नहीं देता, तो क्या हुआ, वो पैसा कहाँ है? इसका मतलब वो जागृत वाला भी झूठा है, उससे हमारी तृप्ति नहीं, और ये स्वप्न में हम मांग रहे हैं, यही तो उसके साथ हुआ था, नरप्रत्येक सिंहासन सोया, सिंहासन में राज्य पे बैठा था, अच्छत राज विचलित दुख पाया, यही लिखा है ना, अच्छत राज विचलित दुख पाया, अच्छत का अर्थ होता है कि राज है, नष्ट नहीं हुआ, सिंहासन पे बैठा है, वो अपने महल में बैठा है, विचलित दुख पाया, तो भ्रम से बिछड़ा है ना, वो गया कहीं नहीं, वहीं बैठा है, तब भी उसको कष्ट हो रहा है कि मेरा राज्य चला गया, मैं भिखारी हो गया, तो हुआ कुछ नहीं, इसका मतलब था ही नहीं वो, यदि होता तो भिखारी कैसे मानता अपने आप को, तो ना स्वप्न के पदार्थ सत्य है, ना जागृत के सत्य है ही नहीं, जागृत भी झूठा, जागृत का पदार्थ भी झूठा, कल्पना है ना कि हम जाग रहे हैं, कल्पना हमने मानी कि मैं जाग रहा हूं, तो जब हमारी कल्पना बदल गई तो जागते हुए सो गए, हम जा रहे थे सड़क पे, रोड पे जा रहे थे हम, कल्पना जब चले थे तब थी कि हम नौकरी पे जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में एक हमने आदमी खड़ा कर लिया, रास्ते में जाते जाते एक आदमी खड़ा किया मन में, और उसके साथ झगड़ने लगे, कहां से आया वो? हमने खड़ा किया ना, हम गाड़ी चला रहे हैं या मोटरसाइकिल से जा रहे हैं कि एक आदमी हमने अंदर खड़ा किया कि आपने मेरे को ये बोला था, आपने मेरे को ये बोला था, तो सीधा किसी से टकरा गए, तो कहां से आया वो? जिससे लड़ रहे थे वो कहां गया? यही थे हम कह रहे थे ना, आपने मेरे को ये बोला था, आपने मेरे को ये बोला था, मैं आपको ये करूंगा वो करूंगा, वो मन में ही था, वो आदमी कहीं से आया नहीं था, जब दूसरे से टकराए तब पता चला, तो हम जागृत हो सो गए थे कि नहीं? जागते नहीं थे, केवल हमारी कल्पना थी हमारी, तो जैसी हम कल्पना करते हैं वैसे ही हो जाते हैं, हुआ कुछ भी नहीं है, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं, हमारी कल्पना से जागृत भी हम सो सकते हैं और सोए हुए भी जाग सकते हैं, इसलिए जो कुछ है सब कल्पना का है, यही अध्यास है, जो हमारी कल्पना है यही अध्यास है। इसको छोड़ के जागृत आदि जो त्रय अवस्था हैं सब प्रपंच से भिन्न नहीं है। ये कहते हैं कि सारा प्रपंच केवल जागृत आदि अवस्था है और कुछ भी नहीं है। तो तीन व्यापे जगत को तुरिया पावे कोय, गुरु महाराज जी कहते हैं तीन व्यापे जगत को तुरिया पावे कोय, सारा संसार तीन गुणा में व्याप्या पूर्ण होत ना काम। गुरु महाराज की जो पंक्ति है, तीन गुणा में व्याप्या पूर्ण होत ना काम, चतुर पदार्थ अष्टपद भज नानक हर नाम। जो चतुर पदार्थ है ना, तुरिया अवस्था सदगुर ते हर जान, ये भी बात कही महाराज ने। ये बात कहते हैं ना, जैसे ये तीन अवस्था कहे है व्याख्यान, तुरिया अवस्था सदगुर ते हर जान, तीन अवस्था का व्याख्यान कहते वेद भी करते हैं। त्रैगुण विषया वेदा भगवान कृष्ण कहते हैं कि वेद तीन गुणों का व्याख्यान करता है, सत तम और रज तीनों का व्याख्यान करता है ना। महात्मा है, ग्रंथकार हैं, तीनों का व्याख्यान करते हैं। तीन अवस्था कहे है व्याख्यान, और तुरिया अवस्था सदगुर ते हर जान वो नहीं कहीं से मिलती, उसका व्याख्यान कोई नहीं करता। वहां जाके वेद जो है रुक जाता है, नेति नेति कह के चुप हो जाता है। चतुर्थ की जब बात आती है ना, तो वेद नेति नेति कह करके चुप हो जाता है, उसको नहीं बोलता वो, क्योंकि वो व्याख्यान करने की उसके पास शब्द ही नहीं है, वो शब्दों का विषय नहीं है। वहां जाकर के वाणी रुक जाती है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यहां जाकर के वाणी मन के सहित वापस लौट आती है। जो मन के द्वारा प्राप्त नहीं है वो हमारा स्वरूप है। तो उसी की बात महाराज जी कहते हैं कि तीन अवस्था कहे है व्याख्यान, तुरिया अवस्था सदगुरु ते हर जान। जो तुरिया अवस्था है ना, चौथा पद है, वो सदगुरु की शरण से मिलता है। इसलिए जब इस गुरुओं की शरण में आएंगे, उनके चरणों में पड़े रहेंगे, तो हमारे को मार्ग अवश्य मिलेगा। हरिओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।